तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रियाये कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो यं प्राव्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तवैवास्मि जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम जरा सब समय सिर में देने से सिर में भारी हो जाता है, इसलिए अधिक सुंदर है। ये सब में सिर पर मत
बोला दिए तुम
लोग कहते
बोला दिए
मैं सब प्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रवेश हूँ विष्णुपाल श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात परमादरणीय त्रिदंडी पादगण वैष्णवगण वैष्णवीगण एवं परमादरणीय श्रोतागण, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी एक वर्ष पहले संस्थापित श्री बांके बिहारी मित्र मंडल और श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ और दूसरी समितियों के प्रयास से यहाँ पर हरि कथा श्रवण करने के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुझे विशेष करके ये सुनकर के प्रसन्नता हुई कि इस बांके बिहारी मित्र मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य की बुरी सभ्यता को रोकना है जो भारत में पाश्चात्य देशों की बुरी सभ्यता का प्रभाव कम से कम पड़े उसको रोकने के प्रयास के लिए किया है और इनका प्रयास बहुत ही उच्च है। विशेष करके पहले दिल्ली के कोर्टों में कचहरियों में डाइवोर्स का मामला बहुत कम था, 5-10 वर्ष पहले बहुत इने गिने थे, आज तो उसकी संख्या करीब करीब लाखों के रूप में पहुंच चुकी है। वैसे पाश्चात्य देश वाले उस सभ्यता से तंग आ गए हैं और विश्व के कोने कोने में जहां जहां मैं गया वो भारतीय संस्कृति ग्रहण कर रहे हैं, और हम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं यहाँ के लोग। यथार्थ में आज हमारे देश की और विश्व की समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, विश्व के लोग प्राणी मात्र कैसे सुखी रह सकते हैं, हमारे पुराने प्राचीन संत लोग नारद से लेकर के ब्रह्मा से लेकर और अब के जितने संत हो गए हैं इसकी चेष्टा करते हैं। आजकल आप लोग जानते हैं कि साइंस और कंप्यूटरों ने आज कैसे उन्नति की है। एक व्यक्ति की आंख दूसरे में लगा देना, किसी का दूसरे का हृदय और किडनी एक शरीर में लगा देना आम बात है। इस तरह से हम देखते हैं रसोई घर से लेकर और साइंस में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में विश्व खूब उन्नत हो रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक डिस्कवरियां हो रही हैं। अस्पतालों में जाने से या एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में पहुंचना ये आजकल की आम बातें हो गई हैं। उन्नति तो हुई है यह बात ठीक है, किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है और वही पहलू समस्या का कारण बन गया है। पहलू है जहां पहले प्रेम धर्म माने होता है प्रेम, जगत मात्र का प्राणी मात्र का धर्म प्रेम है। एक परिवार में हम रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, किंतु वह प्रेम आजकल नहीं है परस्पर। एक एक व्यक्ति अपने को असहाय समझता है, इसलिए यह समस्या प्रेम की है और धर्म प्रेम करना सिखलाता है। बहुत से आजकल ऐसे धर्म हैं, यदि आप खुदा खुदा अल्लाह न करें तो आपको क्या कहते हैं,
काजू पत्तल कर देंगे, पत्तल कर देंगे,
नहीं
काफिर,
काफिर है। उनकी नजरों में जो मुस्लिम नहीं है वो सब काफिर है, कत्ल करने के लिए है। किंतु सबको समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि विश्व का रचयिता एक है। भाषा के भेद से, कंट्री के भेद से, देश के भेद से, समय के भेद से उसी एक ही प्रभु का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में देखा जाता है, सुना जाता है, किंतु एक ही परमेश्वर, एक ही वही गॉड है, वही खुदा है, वही विश्व का सृजन करने वाला है, वो दूसरा नहीं, सबके प्राणियों में वही है, फिर द्वेष किस लिए। किंतु आज धर्म के नाम पर चारों तरफ में घृणा और द्वेष फैल रहा है, विवाद और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। धर्म यह नहीं सिखला, धर्म तो प्रेम की भाषा है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। कृष्ण का स्वरूप देखिए। गीता में कहीं भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि का नाम नहीं लिया, आत्मधर्म कहा। श्रीमद् भागवत विश्व की सबसे श्रेष्ठ महान ग्रंथ है। यदि गीता प्रारंभिक पुस्तक है धर्म राज्य की, तो श्रीमद् भागवत एमए पीएचडी का वह ग्रंथ है जो विश्व की सारी समस्याओं का सार्वदैशिक समस्याओं का हल उसमें कहा गया है। इसलिए हम भागवत की कथा सुनाएंगे, उसका उदाहरण देंगे, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहते हैं किसको। भक्ति तो सभी करते हैं, किंतु यथार्थ में वो भक्ति नहीं होता, इसलिए इसकी रूपरेखाएं हम बतलाएंगे, उसका उदाहरण देंगे, और कैसे मनुष्य अपने जीवन में सुखी हो सकता है, लोक परलोक में सुखी हो सकता है, इन कथाओं के माध्यम से ये भी हम परिवेशन करने की चेष्टा करेंगे। अब हम भक्ति के संबंध में बतलाएंगे, तब तक एक कीर्तन हो जाए।
जय जय श्री राधे, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, हमारो धन।
भगवान हमें हाथ दिया है, किसलिए? हाथ ताली देने के लिए। अगर इस जन्म में हम ताली नहीं बजाएंगे दूसरा जन्म में भगवान हमको हाथ नहीं देंगे, ये आप रखेंगे। और बड़े भाव से बड़े प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे
कलयुग का आगमन हुआ। उस आगमन करते ही हमारे भारतवर्ष के 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। उनका इसी तरह से कथा का सत्र हुआ। वो विचार कर रहे थे किस प्रकार कलयुग के प्रभाव से बचा जाए। स्त्री और पुरुष, इस पुरुष स्वेच्छाचारी स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी कलयुग के प्रभाव से। घोर कलयुग में पातिव्रत धर्म सीता अरुंधति इत्यादि के समान नहीं देखने में मिलेगा। लोग शस्त्र से भ्रष्ट हो जाएंगे। इन समस्याओं की मूल जड़ देहात्मवाद, इस शरीर में, यह शरीर को ही आत्मा समझना, मैं समझना, आप लोग समझेंगे। शरीर एक हाड़ चाम, रक्त पैखाना पेशाब की थैली है, किंतु सौभाग्य से इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। जितना ही इसका ऑपरेशन किया जाए, जड़ नेत्रों से आत्मा और परमात्मा नहीं दिखेगा। इसलिए आधुनिक जगत के साइंटिस्ट और ये सब लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। नेचर से ही जगत अपने आप हो गया, ऐसी कितनी तरह की मान्यताएं नास्तिक है, किंतु इसके मूल में एक प्रभु है। इसलिए ये शरीर मैं नहीं हूं, पहला ये भागवत की कथा है। जीविका निर्वाह किया जाए, शरीर को अपने मन से और सांसारिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो इसलिए हो कि आत्मा और परमात्मा का इसी मनुष्य जीवन में हम लोग अनुसंधान कर सकें, और फिर इस मनुष्य जन्म में या किसी जन्म में नहीं आना पड़े, दोषों से सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। किंतु हम देह में, इस मर्त्यशील शरीर में मैं का अभिमान रखते हैं, इसको देहात्म बात करते हैं। इसलिए वो लोग विचार करने लगे, ऋषि लोग, भयंकर कलयुग आने वाला है, लोग अपने बच्चों को भी मार करके खा जाएंगे। अभी तो हमने सुना था जे कहां लखनऊ या कहां होटल रेस्टोरेंट में एक बच्चे को मार करके उसका मांस परवेशन करते थे। अब ये घटनाएं बढ़ेंगी, कलयुग का प्रभाव घोर होगा, कथाएं ऐसी नहीं मिलेंगी कुछ दिनों के बाद में। इसलिए हम लोगों को जीवन धारण करते हुए भगवान का कुछ भजन करने चाहिए। एक बात और मैं आप लोगों को सावधान कर दूं, आजकल जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं और उसके बदले लाखों रुपए भी लिए जा रहे हैं। कथावाचक रुपया बिना लिए कथा नहीं कहता, और उसमें तबला, सारंगी और दूसरे दूसरे वाद्य यंत्रों का और संगीत का, लौकिक संगीत का समावेश होता है, उसे हरी कथा ढक जाती है। मैं आप लोगों को ऐसी कथाएं कहने के लिए नहीं आया हूं, जो भागवत में सच्ची सच्ची कथाएं हैं, जो मनोरंजन के लिए नहीं है, मन को कंट्रोल करने के लिए है। इसलिए मैं मनोरंजन करने के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। मुझे पैसे का भी लोभ नहीं है, जो यहां से एक पैसा मिलेगा, पैसे के लिए भी हरि कथा नहीं सुनाने आया, न पैसे के लिए हमको अर्ज करना है। दो रोटी वृंदावन में मिल जाती है, बड़ी भली भांति गुजारा हो जाता है। फिर देश विदेश में जो जाते हैं इस कथा के प्रचार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, यही हमारी गुरु परंपरा की नीतियां हैं। तो मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं आया, मनोरंजन नहीं करूंगा। आप लोगों के भला के लिए यदि कड़वी सत्य बातें होंगी तो उसको भी कहूंगा, जो व्यास जी ने और सुखदेव गोस्वामी ने जनता के सामने उपस्थित की है, इसलिए विचलित न होंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत में कड़वी बात यदि पिता, माता, यहां तक कि गुरु, भाई, पत्नी और पति भी भगवान के भजन में सहायक न हो, इसमें हमारा साथ नहीं दे, तो उनको भी त्याग कर देना चाहिए। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कह सकता, कोई भी शास्त्र ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं। लोगों का मनोरंजन करेंगे, इसलिए एक मात्र भागवत ही ऐसी सच्ची लोगों के कल्याण की बातें कह सकती है। मैं यथाजूत रूप में, हम लोग तो उतना सुंदर, वो बॉम्बे के कीर्तन करने वाले कौन है, विनोद अग्रवाल और ये सब हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो हरी बोल करेंगे और जिसे कल्याण हो ऐसे ही बात करेंगे। जो कथा पैसे के लिए होती है वो बिक जाती है, उस कथा से कल्याण नहीं होता, चाहे लाख कोई कथा सुनाए। इसलिए कथा वाचक में सुखदेव गोस्वामी जी जैसे गुण हो, चैतन्य महाप्रभु जैसे गुण हो, जो केवल हम लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। तो कलयुग के पहले ऋषि लोग विचार करने लगे, उनमें से सौनक आदि कुछ ऋषि थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने सुत गोस्वामी जी से कहा, ये आप तो अपने गुरु जी से समस्त शास्त्रों का तात्पर्य समझा है, वेदों के अखिल वेदों के ज्ञाता हैं, सारे शंकाओं को दूर करने वाले हैं, इसलिए कृपा करके अपने गुरु से जो सुना है बलदेव जी की प्रेरणात्मक शक्ति से जो कुछ आपने समझा है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, अतः साधो अत्र जत्सारं समुद्भित्य मनीषया प्रूहिणस्तद्दधाना यह आत्मा प्रसीदति। प्रश्न किया, आत्मा जैसे प्रसन्न हो, शरीर प्रसन्न हो, इसके लिए नहीं पूछा। शरीर तो आप चाहें और ना चाहें, लाख साइंटिस्ट मिल जाएं, डॉक्टर मिल जाएं, बुढ़ापा को नहीं बंद कर सकते एक पल के लिए भी, और शरीर भी अपने समय पर जाएगा, ये आत्मा जैसा अमर नहीं है, ये तो जाएगा ही, इसके लिए चिंता न करके कहते हैं अतो साधो जगत के लिए जो कल्याणकारी बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं हमसे बतलाइए। क्यों? प्रायेण अल्प आयुष, कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम रह गई है। आप सतयुग की बात सुनेंगे, एक एक व्यक्ति लाखों वर्ष की आयु होती थी, लाखों वर्ष तो 60,000 वर्ष तो वो तपस्या में ही उनका चला जाता था, लाखों वर्ष की आयु। द्वापर में त्रेता में कुछ कम हुई तो अभी 60 है, राम श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक राज्य किया, तो 11-12 वर्ष आम बात थी। द्वापर में और कम हो गया तो हजारों की उम्र थी। अब कलयुग में इसको मान लिए, यद्यपि कोई कोई 125 वर्ष भी जीवित रह सकते हैं, किंतु कुल मिला करके एक वर्ष 100 वर्ष की आयु रखी गई, और 100 वर्ष की आयु में आधी तो सोने में चली गई, और अजितेंद्रिय व्यक्ति जो शराब इत्यादि पीते हैं वो तो बहुत अधिक सोते हैं, कोई उस पर अंकुश नहीं है। अब आधी 50 वर्ष की आयु सोने में चली गई, और किसी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए 20-25 वर्ष आम बात है, ये पढ़ने लिखने एक्सपर्ट होने में चला गया, और 80 वर्ष से 100 वर्ष की आयु यो ही चली जाती है वृद्ध अवस्था। 10 वर्ष की आयु बचती है, इसमें विवाह शादी, बच्चों को लिखाना पढ़ाना योग्य बनाना इसमें चला जाता है, भजन करेंगे कब। इसलिए कहते हैं प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलौ जगा जुगौस्मी, कलयुग में बहुत थोड़ी सी उम्र है और मंदा बुद्धि भी मंद है, अपने को तो बहुत बुद्धिमान समझते हैं किंतु आत्मकल्याण की बातें नहीं सोचते, शरीर के लिए ही सोचते हैं। संयुक्त राष्ट्र है उसमें विश्व के लिए कितनी बातें होती हैं किंतु सभी शरीर के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी उसमें नहीं होती। आज तक कुछ कर भी नहीं सके हैं, कर नहीं सकते। मंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य, करते हैं अच्छा के लिए हो जाता है बुरा, और ही उपद्रव, तरह तरह के उपद्रव हैं, कितने तरह के रोग लगे हैं। पास पड़ोसी के लोग हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देंगे, तरह तरह की समस्याएं हैं। इसलिए कहते हैं हे साधो, हे सुत गोस्वामी जी, आप अपनी बुद्धि से शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, जीव कैसे सुखी हो सकता है, मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके पास में आए हैं, इसलिए आत्मा कैसे प्रसन्न होती है इसका उपाय बतलाइए। शरीर के प्रसन्न होने के लिए नहीं पूछा, आत्मा के लिए। हम शरीर के सुखी होने से सुखी नहीं हो सकते, लाख कोई चेष्टा करे शरीर सुखी होने के लिए मरेगा ही, और अपने साथ इस कमाई का एक कौड़ी दमड़ी भी साथ नहीं ले जाना है, ये भी समझो। केवल गधे की तरह भागवत में ऐसा लिखा, घर में ही नहीं ना पशु भी समझ, दिन रात परिश्रम करता है उसका एक कौड़ी भी साथ में नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए आत्मा कैसे प्रसन्न हो आप कृपा करके बतलाइए। प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने गुरु को प्रणाम कर कहने लगे, सबई पुंसां परो धर्मो जतो भक्ति रथोक्तये अहे तुक्य अव्यवहिता जा भक्ति सुतो। मनुष्य मात्र के लिए एक धर्म है और एक परम धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये जीवन की को सुचारू रूप से चलाने की ये व्यवस्थाएं मात्र हैं, परम धर्म नहीं है। हमारा वर्णाश्रम धर्म उस परम धर्म के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। इसमें भगवत भक्ति इत्यादि की बातें हैं, विश्व के किसी भी धर्म में ऐसी बातें नहीं है। तो कहते हैं सबई पुंसा, निश्चित रूप में प्राणी मात्र के लिए परम धर्म एक है। तो परम धर्म क्या है, इंद्रियों से अति जो भगवत तत्व हैं उनके प्रति अहेतु की बिना कारण की भक्ति हो, बिना किसी हेतु की। जैसे कोई एक व्यक्ति दुखी है, उसका लड़का अनएम्प्लॉयड है, बीमार रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में गया और चौकट को दबाने लगा, मानो शंकर जी की सेवा कर रहा हूं, और मन ही मन संकल्प किया हे प्रभु हमारा ये रोग दूर हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति हो जाएगी अच्छी, तो एक रुपए का बताशा आपको भोग लगाऊंगा। ये क्या हुआ, ये भक्ति नहीं हुई, अपने स्वार्थ के लिए किया। तो भक्ति किसको कहते हैं? उसी को समस्त शास्त्रों का तात्पर्य लेकर और संक्षेप में बताया, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद जनापितम, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। बड़े सावधानी से श्रवण करेंगे, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद जनापितम, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने तन मन वचन और सारी इंद्रियों की सारी चेष्टाओं को और भावनाओं को यदि लगाया जाए तो इसको भक्ति कहते हैं। फिर से समझिए, यदि अनु निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हमारे तन मन वचन और शरीर की सारी इंद्रियाओं और भावनाओं की चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उद्देश्य से ही यदि की जाती है तो उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भक्ति नहीं है किंतु हम लोग उसको भक्ति समझ लेते हैं। यही भक्ति में जो जब तटस्थ दो लक्षण, गौण दो लक्षण आ जाते हैं तो उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। पहला, भगवान का भजन कर रहे हैं उसमें लौकिक किसी प्रकार की अभिलाषा न हो और ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति होती है, जब तक ऐसा विचार रहेगा तब तक वो भक्ति नहीं है। इसको सरल शब्दों में फिर से मैं बतला रहा हूं। ध्रुव जी हैं भगवान की भक्ति की और रिकॉर्ड ये बतलाया, 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान ने उनको दर्शन दिए शंख चक्र गदा पद्म के रूप। किंतु उनका यह भक्ति भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति है। ये लौकिक कामना आ गई ना, जो पिता के राज्य के लिए उन्होंने किया था, जो पिताजी का राज्य मिल जाए या इससे भी श्रेष्ठ विश्व का राज्य हमें मिल जाए, ये लौकिक इच्छा है। इसलिए भक्ति नहीं हुई, सकाम भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति प्रहलाद महाराज की हो सकती है। कैसे? जब नृसिंहदेव ने प्रहलाद की रक्षा के लिए जब हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद जी उनकी गोदी में चढ़ गए, प्रभु ने कहा जे वर मांगो, तूने वर मांगने की इच्छा यदि हमारे अंदर है तो संपूर्ण रूप से दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर में कोई भी अभिलाषा संसारिक नहीं है, तुम दूसरा वर मांगो। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, उन्होंने आपके चरण में अपराध किया, वैष्णव के चरण में, ये भी हो गया है। जिस स्कूल में एक साधारण भक्त जन्म ग्रहण करता है उसके 7 कुलों का अपने आप उद्धार हो जाता है। जिस स्कूल में मध्यम श्रेणी के भक्त हों तो 14 पीढ़ी के लोग का उद्धार हो जाता है। और जो व्यक्ति उत्तम भक्त है तुम्हारे जैसे, उसके 21 पीढ़ी के पितृ का उद्धार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, तो अभी वर मांगो, तो उन्होंने वर मांगा कि जगत के लोग बड़े दुखी हैं, हम अपनी भक्ति का फल चाहते हैं कि उनको मुक्त कर दीजिए, मैं उनका कुकर्म लेकर के संसार में मैं भोगता रहूं जन्म जन्म। भगवान बड़े खुश हैं, हमारी और तुम्हारी कथाओं का जो कथन करेंगे उन सबको हमें मुक्त कर दें। इसलिए प्रहलाद महाराज जी की शुद्ध भक्ति है। इस विषय में ध्रुव जी का चरित्र संक्षेप में अभी तीर्थ महाराज जी बतलाएंगे। तो तुम्हारा कहाँ है बोलो,
में ही पास में सुरु की खड़ी थी,
उनने देख लिया बालक की इच्छा है पिताजी के गोदी में बैठने को, साथ ही साथ झपटते हुए बोल दिया, बालक ध्रुव तुम इस रूप में पिताजी के गोदी में नहीं बैठ सकता जब तक इस शरीर को छोड़कर मेरे कोख में जन्म नहीं लेता, तब तक तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी नहीं, जाओ यहां से। इस तरह से बड़े जोर से डांट लगा दी, बालक का मन खराब हो। तब वो बालक वहां से रोता हुआ चला अपने माता के पास। माता को पहले से ही सूचना मिल गई, तब वे रोने लगी कि अवहागिन के बालक की दशा ऐसी। जबकि वो बालक भी रोता है और माँ भी रोती, तब माँ ने रोते हुए उस बालक को समझाया, बालक हे ध्रुव तुम्हारे पूर्वजों ने जिस परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस जगत में सुख संपदा को प्राप्त हुए तथा परम जगत में जाकर वे नित्य आनंद में डूबने चिर शांति चिर सुख को प्राप्त किए, ऐसे भगवान श्री हरि की तुम आराधना करो, वे कमल लोचन हरि अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। उस समय ध्रुव जो कि छोटा सा बालक है माता जी के वचन पर सुदृढ़ निश्चय करते हुए वन की ओर चल दिए, जहां घना घोर जंगल, जहां बड़े बड़े हिंस भयानक पशु पक्षी प्राणी समुदाय है, ऐसे घने वन में प्रवेश। कमल लोचन हरि कहाँ है, हरि कहाँ है, जब उसके अंदर में यह आंतरिक भावना जाग उठी कि हमें भगवान श्री हरि का दर्शन करना है, उनकी प्राप्ति अवश्य करना है, ऐसे समय में भगवान श्री हरि वे समझ गए, जान गए, क्योंकि वे अंतर्जामी सबके हृदय में निवास करते घर घर वासी, उन्हें जानने में अधिक समय नहीं लगता है, परंतु हमारी भावना में समय लग जाता, जो कि हम सच्चे दिल से न तो प्रभु को पुकारते हैं और ना ही हम उनको चाहते हैं, हम चाहते हैं संसार को, इसलिए भगवान से हम अति दूर। जब हम उनसे निकट होना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब वे हमें हमारे सामने सच्चे गुरु को भेज देते, जैसे कि भगवान नारायण ने नारद को कहा कि हे नारद हमारा एक प्रिय भक्त बालक ध्रुव मुझको भुका रहा है, उसे मार्गदर्शन कराना है, वो जानता नहीं है, तुम्हें अति शीघ्र वहां जाने का है, भगवान का आदेश हो। इतने में से नारद जी तत्क्षणा वहीं पर उपस्थित होकर बोले कि बालक कैसे तुम यहाँ पर घूम रहे हो, यहाँ बाघ भल्लू शेर गंडार कितने हिंस प्राणी है, ऐसे भय संकुल भयावह प्राणियों के बीच में इस जंगल में घूमना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम लौट जाओ। बालक कहता है नहीं, मैं तो कैसे भी नहीं लौट सकता, क्योंकि मेरी सौंदर्य मांग है, दूसरी माँ ने हमें डांटा फटकारा है, तिरस्कार किया है, मैं कभी भी नहीं लौटूंगा। बोले अच्छा, माँ ने तिरस्कार किया है, अरे माँ शासन करती है, जानती है, फिर प्यार भी तो करती है, अब तुम्हें लौटना चाहिए, देखना जाने से तुम्हें अवश्य प्यार करेंगे। बोले नहीं, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं मरना जानता हूँ परंतु पीठ नहीं दिखा सकता, जब प्रभु के भजन के लिए निकला तो वह मेरा सुदृढ़ संकल्प है, अवश्य मैं भजन करूंगा, जबकि उसकी दृढ़ता पर निश्चयता देखते हुए श्री नारद जी ने कहा छवालक जाओ। इस जमुना में स्नान करके आओ, मेरे पास अभी आ जाओ, मैं तुम्हें मन को देता हूँ। तत्क्षणात् जब कि वह स्नान करके लौटा, तब श्री नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। मंत्र दे करके विधि विधान बताए कि इस रूप में तुम मंत्र का जप करना भगवान का पूजा पाठ है, और अति शीघ्र वे अवश्य दर्शन देंगे। उस समय बालक ध्रुव ने जैसे ही मंत्र प्राप्त किया, श्री गुरु जी की आज्ञा को प्राप्त करते हुए वे मधुवन मोहली मधुवन किला में पहुंचे। वहां जाकर के वे भगवान की आराधना में तत्पर हो गए, और ऐसे करते करते उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को कंट्रोल किया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांचवे महीना, छठवे महीना में अन्न भोजन पान आदि छोड़ करके केवल वायु पर जीवित रहने लगे, और उसको भी कंट्रोल करते हुए भगवान में चित्त लगा लिया। उस समय समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, तब कि भगवान श्री हरि उनके हृदय से प्रकट होकर सामने अवतरित हुए। बोलो ध्रुव नारायण की। इस प्रकार ध्रुव नारायण के चतुर्भुज रूप में जबकि सामने प्रकट हो गए। उस समय बालक ध्रुव ने उन्हें देखा, देखते ही बड़े आनंद में विभोर हैं, परंतु वे जानते नहीं कैसे भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी। उस समय भगवान ने अपना शंख लेकर के उसके गाल पर फुला दिया। जब ही फुला दी, इतने में उनके मुंह से वेद मंत्र निकलने लगे। भगवान की स्तुति प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, परंतु तुम क्या चाहते हो बोलो। जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो मैं अवश्य पूरा करूंगा, मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है। उस समय बालक ध्रुव क्या जानता है क्या मांगे। तब भगवान ने कहा, ध्रुव जबकि तुम आया था उस समय तुम्हारे अंदर पिताजी के गोदी में राज सिंहासन में बैठने की लालसा थी, तो मैं तुम्हें 36,000 वर्ष के लिए निष्कंटक राज्य समर्पण करता हूँ, और अंत में मेरे चरणों में भक्ति प्राप्त कर मेरे परम धाम को तुम प्राप्त हो, जो कि तुम्हारे नाम से ध्रुव जाने स्थिर। ऐसे जो विष्णु लोक है वह लोग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसे ही वरदान देते हुए भगवान देखते देखते अंतर्धान हो गए। उस समय बालक ध्रुव ने सोचा, रे ये हमने क्या किया, कांच खोजते खोजते हमें कंचन मिला, और कंचन को छोड़कर मैं कांच के टुकड़ा में रह गया। जहाँ प्रभु का दर्शन मुक्ति के लिए होता है, संसार से पार होने के लिए होता है, प्रभु के लोक में जाने के लिए होता है, उनके चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए होता है, वो न मान करके मैं जगत का सामान्य तुच्छ संपदा विषय सुख भोग को मांग लिया, और इसी में मैं रंग गया। अहो मुझको धिक्कार है, मैं क्यों ऐसी प्रार्थना की, क्यों मेरे अंदर ऐसी चाहत हुआ। यही भगवान की परम अनुपमता है। जो कोई प्रभु का भजन करता है, भगवान के चरण कमल को आश्रय करता है, उनके चरणों में ध्वज, वज्र, अंकुश, कलश, पताका आदि चिन्ह समुदाय, जो कि कोई भी व्यक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय करता है, तो उनके चरणों में रहता है अंकुश। अंकुश से क्या होता है कि एक बहुत बड़े मत वाले हाथी को अंकुश बस कर लेता है। इसी प्रकार हम सब के मत वाले हाथी के जैसे मन को बस करने के लिए भगवान के चरणों का अंकुश काम में आता है, जो कि भगवान अपने चरणामृत, प्रेमामृत और मधुरामृत का पान कराते हुए वे हमारी सारी विषय वासना को, संसार वासना को छुड़ा लेते हैं। इसलिए कोई भी भक्त कैसे भी हो प्रभु के चरणों में आश्रय ले, जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तब गुरु ही ऐसे सच्चे मार्ग को दिलाते हैं और भगवान का दर्शन कराते हैं। जैसे श्री नारद जी ने ध्रुव को भगवत प्राप्ति कराई, मंत्र तो सभी लोग जपते हैं, सभी लोग कीर्तन करते हैं, परंतु उसमें न तो कोई शक्ति है, न कोई प्रेरणा है और न ही कोई ताकत है, जो कि कोई गुरु अनुभवी पुरुष जबकि मंत्र बोल देते हैं, वे अपने साधना की शक्ति को उसके साथ में प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कि ध्रुव तो हुआ है, इस प्रकार ध्रुव महाराज जब वहां से लौटने लगे तो उस समय मन में कुछ स्वस्थ विचार से भी आ रहे थे कि हमें प्रभु ने भगवान ने ठग दिया, क्यों हम ऐसे लेकर के आ रहे, हमें भगवान के चरणों में भक्ति है। ऐसे समय में उनके पिताजी बड़े दुखी थे, तब नारद जी महाराज आ गए थे, उनके सामने अपने बातों को सुना रहे थे कि मैंने अपने बालक को रोक नहीं पाया, ना गोदी में ले सका, ना उनको कोई प्यार किया, और वह बेचारा कहां दुखी होकर के चला गया, कुछ पता नहीं। नारद जी बोले, मैं संसार की अतुलनीय कीर्ति को प्राप्त करके भगवान की आराधना करके वे लौट रहे हैं, अतः आप उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत करें और आगे चले, आप चिंता नहीं करें। ऐसे समय में महाराज उत्तानुपात बाल हस्ती सजाए चतुरंगिनी सेनाओं के साथ, सभी माताओं के साथ, दोनों माता उत्तानुपात महाराज वे सब चले, उस बालक को गोदी में उठा ली, बड़े लाल प्यार के साथ में ले आए। महाराज उत्तानुपात ने कहा कि हमें धिक्कार है कि इतना दिन हम विषय सुभोग में डूबे रहे, हमारा छोटा बालक जबकि भगवान का दर्शन करके लौटे हैं, कितना ही सौभाग्य का विषय है, अब राज मुकुट उन्हीं के मस्तक पर दे करके स्वयं प्रभु के भजन के लिए निकले। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में पहले कुछ कामना वासना रहती है, कुछ इच्छाएं अभिलाषाएं रहती हैं, फिर भी एकांतिक भाव से कोई भी व्यक्ति जब गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, तब उसी से ही जीवन का वास्तविक कल्याण प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में इसी का ही वर्णन हुआ है। मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ में आपसे
जिस श्लोक की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इस श्लोक में अंत में कहा गया कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, समस्त भगवान के आदि हैं, स्वयं अनादि हैं। कुछ लोग कहेंगे भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, जगत में आते हैं तो कोई रूप धारण करके आते हैं, किंतु हैं वो निर्गुण, निराकार, निरंजन और रूप। इस चीज को आप लोग समझिए, निर्गुण, निराकार, निरंजन ये सब मौलिक शब्द नहीं है, ये कुछ उपसर्ग अर्थात रोग जैसे निर्णय करते हैं। नाक से पानी बह रहा हो, सिर में दर्द हो, ये सिम्टम है, जैसे इसको समझो जो सर्दी जुकाम लग गया, इसको निसर्ग कहते हैं। निसर्ग में नी लगा करके निराकार, अ लगा करके अरूप, किंतु मौलिक शब्द रूप है, आकार है, गुण है। इसमें निसर्ग लगा करके आकार निराकार, निराकार से आकार शब्द नहीं बनता, आकार से निराकार शब्द बनता है। वैसे गुण, गुण से ही नौ निय उपसर्ग लगा करके निराकार बनता है, निराकार से आकार नहीं बनता, निर्गुण से गुण नहीं बनता। इसलिए मौलिक शब्द है रूप आकार। इस चीज को इस रूप में और समझिए, बाइबल में पहले चैप्टर में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने अपने रूप जैसा मनुष्य को बनाया। यदि गॉड का रूप नहीं होगा तो अपने समान रूप कैसे बनाए ये मनुष्यों को। यदि क्रिश्चियन लोग इस विषय को नहीं मानते, भगवान का रूप नहीं मानते, तो उसको बाइबल से निकाल तो दें, नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारा यह सिद्धांत, हमारे शास्त्रों का, वेदों का, सत एव सम्य इदम् आग्रासी। भगवान कृष्ण का आज से करोड़ों वर्ष पहले जो रूप था अभी भी है, पीछे भी रहेगा, वो मरते नहीं है, उनका रूप पारमार्थिक है, सच्चिदानंद भगवान है। केवल बाइबल में ही नहीं, कुरान शरीफ में भी ऐसा लिखा है, इन्ना लाहा खला का मैन सूरत थी, अपने सूरत के समान अल्लाह खुदा ने मनुष्यों को बनाया। यदि खुदा का कोई रूप ही नहीं है, अल्लाह का रूप ही नहीं है, तो अपने रूप के समान में कैसे बनाएंगे। इसलिए मुसलमान लोग भी क्या कुरान से इस शब्दों को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, किंतु मानते नहीं, ये उनकी भ्रष्टता है। अभी आपको बतलाऊं, जब ईसा मसीह जब युवावस्था में बच्चे थे, 10-12 वर्ष के, तो इंडिया में आ गए, वृंदावन में गए, जगन्नाथपुरी में गए, सब जगह इधर के लोग कृष्ण को कृष्ण कहते हैं और उड़ीसा में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण फिर कृष्ण और क्रिस्ट से क्राइस्ट। इस नाम से बड़े प्रभावित हुए, जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में उन्होंने सुना, वृंदावन में कृष्ण सुना, तो भाषा के इधर उधर होने से वो क्राइस्ट बन गया कृष्ण से। तो ये क्राइस्ट जो शब्द है, जेसस क्राइस्ट, ये क्राइस्ट कृष्ण के लिए है, दूसरा कोई भगवान नहीं है, वो लोग भी स्वीकार करते हैं। इसलिए उनके धर्म में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म से मिलती ही जुलती हैं, किंतु हम लोग विशुद्ध क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वो लोग मांस मछली इत्यादि खाते हैं, हम लोग मांस मछली इत्यादि नहीं खाते। वहां पर बाइबल में भी नहीं लिखा जो मांस और जितने प्राणी हैं मछली खाने के लिए है। अब तो हमारे भारतवर्ष में भी ये चीजें आ रही हैं। इसलिए आप लोग इन चीजों को समझेंगे और हमारी प्राचीन संस्कृति के जो विचार है, ये भगवान का रूप है और वही रूप कृष्ण का रूप है। कृष्ण माने होता आकर्षण करना और आनंद देना, तो कृष्ण ऐसे हैं। विशेष करके देखिए, उन्होंने स्त्री जाति को कितना सम्मान दिया है, अपनी मैया के हाथों से बंध गए, ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है। जेसस क्राइस्ट के लिए उनका कोई लीला नहीं है, जैसे हमारे यहां नारायण की कोई लीला नहीं, ऐसे उनकी लीलाएं नहीं है। राम जैसा कारुणिक अवतार जगत के जीवों के लिए उतर करके आए, हमारे दुखों को के लिए, और मर्यादा की स्थापना की, और कृष्ण ने उस मर्यादा को भी लात मारकर प्रेम की मर्यादा स्थापित की। गोपियों के चरणों में अपने सिर को नवा करके बंसी देकर के उनके शरणागत होते हैं। मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, आज तक किसी ने कहा? कोई नहीं कह सकता, ये कृष्ण ही है। विशेष करके राधा जी के द्वारा वो मुग्ध है। उन्होंने कहा जो तुम्हारा ऋण हम चुका नहीं सकते प्रेम का। जो गोपियों ने प्रेम दिया उसके संबंध में अंतिम हम लोग समापन काल में हम बतलाएंगे, दो तीन दिन में गोपियों का कैसा प्रेम था। जो परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के आदि कर्ताओं के कर्ता और उनके वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए प्रेम की जरूरत है। यदि हृदय में प्रेम आया तो संसार के प्रत्येक प्राणी प्रभु के ही अंश से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सब में प्रेम होगा, ईश्वर देश कलह नहीं रहेगा। इसलिए इन कथाओं को जगत में प्रचारित होने की जरूरत है। आप लोग हम लोगों की